तभी अचानक पूरे कमरे में कम से कम 6 से 7 लड़कियां एंट्री हो गईं। अब उन लड़कियों को वहां देखकर मारिया के माथे पर बल पड़ गए कि अचानक ये लड़कियां कहां से आ गईं, क्योंकि किंग ने, यानी कि डेविल किंग ने, पहले ही ये बात अच्छी तरह से मेंशन की थी कि कोई भी एक्स्ट्रा बाहर का आदमी शादी में नहीं आएगा। लेकिन अभी लड़कियों के आ जाने पर मारिया की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। तभी आस्था उन सब इतनी सारी लड़कियों को एक्साइटेड होकर देखकर बोली, आप लोग कौन हैं और आप यहाँ क्या करने के लिए आई हैं? तभी उनमें से एक लड़की आगे बड़े अदब से बोली, मैडम, हमें मिस्टर अरमान सिंघानिया ने यहाँ भेजा है ताकि हम आप लोगों को अच्छे से तैयार कर दें। आस्था और रश्मि तो ऑलरेडी दुल्हन बन चुकी थीं, मारिया भी दुल्हन बनी हुई थी और रौनक और राधिका की मदद से उन्होंने अपना अच्छा खासा मेकअप वगैरह भी कर लिया था। लेकिन इस तरह से उन लड़कियों के वहां जाने पर सब हैरान थे और साथ ही साथ आस्था हैरानी से बोली, लेकिन मुझे तो अरमान जी ने कुछ बताया नहीं था। वेल, चलो अगर आप लोग आ गए हैं तो हम तो ऑलरेडी अब तैयार ही हैं, अब तो आप लोगों को कोई काम नहीं है तो आप जा सकती हैं। जैसे ही उन लड़कियों को आस्था ने जाने के लिए कहा, वे लड़कियां तुरंत रिक्वेस्ट करते हुए बोली, मैडम प्लीज, आप हमारे पेट पर क्यों लात मार रही हैं? वैसे भी हमें यहाँ पर आने के अच्छे खासे पैसे मिले हैं, तो आप लोग हमें अपनी करने दीजिए ना, आप लोगों का थोड़ा थोड़ा मेकअप करने दें। ऐसा बोलकर वो सारी लड़कियां अपनी मेकअप किट निकालकर जबरदस्ती सामने बैठ गई कि अब मारिया हैरानी से उन लड़कियों को देख रही थी, उन लड़कियों के एक्सप्रेशंस भी देख रही थी और कहीं ना कहीं मारिया को कुछ अनहोनी की आशंका सी नजर आ रही थी। वहीं दूसरी ओर जल्दी ही अरमान सिंघानिया, साथ ही साथ आकाश और टाइगर तीनों दूल्हे बने हुए थे, जाकर हॉल में जो मंडप रेडी किया गया था वहां आकर बैठ गए थे, जहां पर 3 पंडित जी थे। तीनों जगह अलग अलग मंडप लगाए गए थे और अब जैसे ही अरमान वहां आकर बैठा और अपनी बेचैन आंखों से चारों तरफ देखने लगा था, तभी उसकी नज़र वसुंधरा पर पड़ी। वसुंधरा जो कि मुस्कुराते हुए नानी माँ से कुछ न कुछ बातें कर रही थी। नानी माँ को हालांकि वसुंधरा से काफी चिढ़ हो रही थी, लेकिन फिलहाल वो अरमान की माँ थी तो नानी माँ सीधे सीधे उसके मुंह पर बेइज्जती नहीं कर सकती थी, तो नानी माँ उससे थोड़ा सा फीके तरीके से बातें कर रही थी। जल्दी ही पंडित जी की आवाज आती है कि दुल्हन को बुलाएं, और जैसे ही दुल्हन को बुलाने वाली बात बोली गई, तुरंत वसुंधरा आगे आती हुई हंसकर एक्साइटेड होते हुए बोली, मैं अपनी बहू को लेकर आती हूँ। वसुंधरा के मुंह से बिल्कुल पूरी तरह से शहद टपक रहा था। अरमान ने वसुंधरा की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा था। वहीं दादाजी भी मुंह पिचकाकर खड़े हुए थे, लेकिन फिलहाल अब थोड़ी देर तक ही उन्हें वसुंधरा को बर्दाश्त करना था, उसके बाद उन्हें वसुंधरा को निकालना ही था, तो इसीलिए उन्होंने उसे इजाजत दे दी थी कि वो जाकर आस्था और बाकी सबको ले आए। वेल, जल्दी ही वसुंधरा गई और अपने साथ दुल्हनों को लेकर आती हैं, और दुल्हनें अरमान, आकाश और टाइगर के बराबर में बैठा दी गई थी, और एक बार फिर पूरी रीति रिवाज के साथ शादियां कंप्लीट होने लगी और सभी लोगों के चेहरों पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी। वेल, जल्दी ही पूरी की पूरी शादी कंप्लीट हो चुकी थी। एक बार फिर अरमान ने आस्था की मांग में अपने नाम का सिंदूर भर दिया था, मंगलसूत्र पहना दिया था। बड़ी ही अच्छे से आस्था ने उस शादी के फंक्शन को एंजॉय किया था। वहीं टाइगर ने भी जल्दी ही मारिया की मांग में सिंदूर भर दिया था और मंगलसूत्र पहना दिया था, और 7 फेरों के कंप्लीट होने के बाद उनकी शादी पूरी हो गई थी। तब वसुंधरा अपने कदम बढ़ाते हुए आगे आती हुई बोली, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी कि तुमने मुझे यहाँ रहने की इजाज़त दिलवाई, लेकिन अब मुझे यहाँ से जाना होगा। मैं सिर्फ अपने बेटे की शादी अपनी आंखों से देखना चाहती थी। जल्दी ही वसुंधरा की आंखों में मगरमच्छ के आंसू थे। तभी वसुंधरा ने आस्था को कंधों से पकड़ा और गले लगाकर फुसफुसाते हुए बोली, मुझे पूरी उम्मीद है तुम मेरे बेटे का बहुत ख्याल रखोगी। वेल, जल्दी ही अरमान ने नानी माँ और दादाजी के पैर छूकर आशीर्वाद ले लिए थे। वसुंधरा से आशीर्वाद लेने का उनका कोई खास इरादा नहीं था, और टाइगर, मारिया और रश्मि, आकाश ने भी अरमान के नक्शे कदम पर चलते हुए दादाजी और नानी माँ से आशीर्वाद लिया था। वेल, जल्दी ही शादी के कंप्लीट होने के बाद वसुंधरा अरमान की ओर देखकर बोली, बेटा, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम एक दिन मुझे जरूर माफ कर दोगे। अरमान ने वसुंधरा को देखना भी जरूरी नहीं समझा था कि वसुंधरा क्या कहना चाह रही है। तभी दादाजी आगे आए और सीरियस टोन में बोले, अच्छा, अब अरमान की शादी हो गई और मुझे लगता है कि तुम्हारा यहाँ रहना अब किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है, तो तुम अब जाओ यहाँ से। दादाजी ने सीधे सीधे वसुंधरा को वहां से जाने के लिए कह दिया था। वसुंधरा दादाजी को घूर कर देखने लगी और मन ही मन में कोसते हुए बोली कि इस बुढ़े को कुछ ज्यादा ही पढ़ निकल आए हैं। एक वक्त था कि ये मेरे सामने ज्यादा बोला भी नहीं करता था, लेकिन आज देखो किस तरह से इसकी जबान चल रही है। वसुंधरा को इस तरह से अपनी ओर घूरता हुआ देखकर दादाजी सख्त आवाज में बोले, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? या अपनी सिक्योरिटी को बुलाऊं तुम्हें यहाँ से भगाने के लिए? अब जैसे ही वसुंधरा से दादाजी ने चिल्लाकर ये कहा, वसुंधरा अब तेज में आ गई थी। वो चीखते हुए कहती है, बुढ़े अपनी औकात में रहे, और मेरे सामने ना तेरी कल औकात थी ज्यादा बोलने की और ना आज औकात है, समझे तुम? और ये क्या तरीका हुआ मुझसे बात करने का? ऐसा बोलकर वसुंधरा दादाजी को घूरने लगी थी। वहीं वसुंधरा के इस तरह से बोलचाल बदलते ही सब लोग हैरान हो गए थे। नानी माँ तो मुंह खोले वसुंधरा की ओर देखने लगी थी। थोड़ी देर पहले तो वसुंधरा नानी माँ को भी माजी माजी कहती फिर रही थी, साथ साथ दादाजी को बाबूजी कह रही थी, लेकिन ये क्या, ये तो सीधे दादाजी को बुढ़े कहने लगी, तो ये देखकर सबकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था।
तभी वसुंधरा चीखते हुए बोली, मुझे पता था कि तुम लोग मुझे नहीं अपनाओगे, लेकिन तुम लोगों को इतनी आसानी से मैं खुशी खुशी नहीं रहने दे सकती थी, और इसीलिए मैंने एक बार फिर से अरमान सिंघानिया की जिंदगी बर्बाद कर दी, समझे तुम सब, बर्बाद कर दी। ये बोलकर वसुंधरा दादाजी की ओर मुस्कुराकर देखने लगी थी। तब नानी माँ का सब्र का बांध टूट गया और वो तुरंत वसुंधरा के सामने खड़ी हुई और एक चांटा उसके मुंह पर खींच कर दे मारा और गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, क्या बकवास कर रही है तू, और ये किस लहजे में बात कर रही है भाई साहब से, अकल नहीं है क्या तुझे, और ये क्या तरीका हुआ, और किसकी जिंदगी में बर्बाद की तूने, हाँ, और मेरे बच्चों की शादी तो अच्छे से हो गई है तेरी आंखों के सामने, और तू है कि बकवास बातें बोले जा रही है, हाँ बोल जवाब दे, ऐसा बोलकर नानी माँ वसुंधरा को देखने लगी थी। तभी वसुंधरा जोरों से हंसने लगी और ठहाके लगाकर बोली, शादी, हाँ बिल्कुल शादी तो हुई है अरमान सिंघानिया की, लेकिन आस्था से नहीं किसी और से, ऐसा बोलकर वसुंधरा जोरों से हंसने लगी थी। वहीं अब नानी माँ सोच में पड़ गई थी कि ये औरत क्या कह रही है। ध्रुव, आहान और साथ ही साथ सुमित तीनों जाकर वसुंधरा के सामने खड़े हो गए थे और सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोले, ये क्या बकवास कर रही हो तुम, हाँ अरमान की शादी आस्था से हुई है, टाइगर की शादी मारिया से हुई है और आकाश की शादी रश्मि से हुई है, क्या आपको सामने दिखाई नहीं दे रहा। अब तो वसुंधरा जोरों से हंसने लगती हैं, अरमान सिंघानिया की बीवी इस वक्त मेरे बेटे वीर के कब्जे में है, समझे तुम लोग, और हाँ एक और बात कान खोलकर सुन लो, अगर तुम आस्था को अब सही सलामत चाहते हो तो मेरे बेटे वीर के नाम तुम्हें वो जमीन करनी होगी जिस जमीन के लिए अबीर सिंह राठौर पागल है, और साथ ही साथ तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए मेरे बेटे की जिंदगी से दूर जाना होगा और उसके ऊपर एक इतनी सी भी आंच नहीं आने देनी होगी। अब जैसे ही वसुंधरा ने अपना रंग दिखाया
और इस तरह से वहां बोलना शुरू किया, अब तो सबकी आंखें हैरानी से फैल गई थी। वहीं ध्रुव, आहान तो ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर हुआ क्या है, वहीं अरमान बिल्कुल सपाट चेहरा लिए ये सब कुछ देख और सुन रहा था। तभी नानी माँ के सब्र का बांध टूट गया था और उसने लगातार दो चांटे और वसुंधरा के मुंह पर दे मारे थे, और वसुंधरा ने तुरंत नानी माँ के बूढ़े हाथों को पकड़ लिया था और नानी का हाथ छटक कर चिल्लाती है, बुढ़िया बंद कर ये ड्रामा, अगर तूने इस बार फिर मुझ पर हाथ उठाया तो मेरा एक चांटा भी तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अब जैसे ही वसुंधरा ने ये कहा, नानी माँ तो तुरंत घबरा गई थी और फिर आंखों में आंसू लाकर हाथ जोड़ते हुए गिड़गिड़ाती है, देखो तुम्हें मेरे साथ जो कुछ करना है कर लो, लेकिन मेरी बेटी कहाँ है बताओ, मेरी बेटी कहाँ है, मेरी बेटी के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, कहाँ मेरी बेटी, कहाँ है मेरी आस्था, बोलो जवाब दो। वहीं दादाजी तो अब पूरी तरह से पत्थर के जैसे जम चुके थे, उन्हें वसुंधरा पर पहले भी यकीन नहीं था, लेकिन वसुंधरा इतना घटिया गेम प्लान करेगी इसके बारे में वो सोच भी नहीं सकते थे। तभी ध्रुव बोला, अगर ये आस्था भाभी, रश्मि भाभी और मारिया भाभी नहीं है तो ये तीनों दुल्हने कौन है। फिर तभी वसुंधरा हंसते हुए बोली, ये मेरी खरीदी हुई लड़कियां हैं जो पैसों के लिए किसी की बीवी बनने को तैयार रहती हैं। ऐसा बोलकर वसुंधरा ने बड़ी ही घटिया लैंग्वेज यूज की थी। अब तो उन सबके आंखों में वसुंधरा के लिए नफरत साफ नजर आ रही थी। वहीं दादाजी तुरंत अरमान के पास गए और उसके गिरीबान को पकड़कर बोले, ये क्या हो रहा है, हाँ ये घटिया औरत क्या बकवास पर बकवास किए जा रही है और तू खड़ा खड़ा देख रहा है, क्या हो गया है तुझे, हाँ बोल जवाब दे, बोलता क्यों नहीं है। तभी उन सबके बीच में से एक आवाज गूंजती है, ये प्रियंका की आवाज थी। प्रियंका शादी के जोड़े में वसुंधरा के पास चलकर आकर खड़ी हो गई थी। अब जैसे ही वसुंधरा ने प्रियंका को इस तरह से अपने पास खड़े हुए देखा, उसके तो चेहरे का ही रंग उड़ गया था और वो पूछती है, तू यहाँ क्या कर रही है, हाँ तुझे तो अरमान से शादी करनी थी ना, इसीलिए मैंने तुझे आस्था की जगह लेने के लिए कहा था, तो फिर तू यहाँ क्या कर रही है, बोलो जवाब दो। अब नानी माँ हैरानी से शादी के जोड़े में सजी हुई प्रियंका को देख रही थी। आगे बढ़कर और प्रियंका के कंधों को पकड़कर बोली, ये सब क्या है प्रियंका, तू यहाँ आस्था के शादी के जोड़े में क्या कर रही है, हाँ बोल जवाब दे, ये सब क्या है। तभी वहां पर किसी के हंसने की आवाजें आने लगी थीं। वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि अरमान सिंघानिया की थी, जो काफी देर से खामोश खड़ा हुआ ये सारा ड्रामा एंजॉय कर रहा था। लेकिन अरमान सिंघानिया के ठहाके लगा हंसने की आवाजें सुनकर जहां तो सबके चेहरों पर मुस्कुराहट होनी चाहिए थी, लेकिन अब सब थर थर कांप रहे थे। अरमान सिंघानिया तुरंत वसुंधरा के ठीक सामने आकर खड़ा हो गया था और उसकी ओर देखकर डेंजरस टोन बोला, कुछ औरतें इतनी घटिया होती हैं तो उन्हें घटिया हरकतों के अलावा कुछ और नहीं सूझता है। जिस औरत ने अपने शौक को पूरा करने के लिए अपने दूध पीते बच्चे तक की परवाह नहीं की, उसे औरत पर इतनी आसानी से मैं अपनी जिंदगी में कैसे आने दे सकता था। लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें ये रहने की इजाजत दी, लेकिन मैं समझ चुका था कि तुम ये रोने धोने का ड्रामा करके क्या करने की कोशिश कर रहे हो। भले ही मेरी प्यारी सी बीवी को तुमने बहलाया फुसलाया था, लेकिन अरमान सिंघानिया बिना किसी इमोशंस के काम करता है, इस तरह से किसी के भी इमोशंस में वो नहीं आता, समझिए आप। और रही बात शादी की, प्रियंका आप यहां मेरी आस्था को नुकसान पहुंचाने के लिए आई थी, मुझसे शादी करना चाहती थी,
जिस शादी से आप खुद भाग गई थी उसके बाद आपको रिग्रेट होने लगा। आपको मेरी पावर पोजीशन पसंद आने लगी और तुम आस्था की जगह लेने के बारे में सोचने लगी। तुम्हें क्या लगा तुमने हल्दी में जो केमिकल मिलाया था उसके बारे में मुझे पता नहीं चलेगा? ऐसा कहकर अरमान प्रियंका की ओर देखने लगा था। वहीं नानी माँ के चेहरे का रंग उड़ गया था कि अरमान को पहले से ही सब कुछ पता था। तभी नानी माँ और दादाजी दोनों ही कन्फ्यूजन से अरमान की ओर देखकर बोले, बेटा ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्या तुम हमें क्लियरली बताओगे? तभी आकाश तुरंत वहां आगे आता है और तुरंत मारिया और टाइगर भी अरमान के दाएं बाएं आकर खड़े हो गए थे। तब आकाश ने कहना शुरू कर दिया, मैं बताता हूँ आपको पूरी बात दादाजी, हमें इन पर पहले से ही शक हो गया था कि ये यहाँ जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ करने के लिए आई है, और वैसे भी हमने इसे यहाँ सिर्फ और सिर्फ इसलिए रहने दिया क्योंकि इसके थ्रू हम इसके बेटे वीर रायचंद तक पहुँचना चाहते थे। और दादाजी खुशी की बात यह है कि हम वीर रायचंद तक पहुँच गए हैं और वो अब हमारे कब्जे में है। अब जैसे ही आकाश ने ये कहा वसुंधरा के तो चेहरे का रंग उड़ गया था और वो झल्लाते हुए बोली, ऐसा कैसे हो सकता है हाँ, मेरा प्लान फुल प्रूफ था, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा बेटा तुम्हारे कब्जे में कैसे हो सकता है हाँ, बोलो जवाब दो। तभी मारिया आगे आती हुई बोली, इसका जवाब मैं आपको देती हूँ।